તારીખ 31/12/1989 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 396 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 120
चित्रपट के योग से ध्यान से नहीं है। ये सतपुरुष के बहुमान भक्ति के परिणाम में भी इतना भेद है कि परोक्ष और प्रत्यक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। एक ही पुरुष के सत्पुरुष की विद्यमानता में जो परिणाम रहता है वो उसकी अविद्यमानता में परिणाम नहीं रहता है। ये तो हम लोगों को भी अनुभव गोचर बात है। जैसे हम सोनगढ़ जाते थे और जाते भी हैं तो सत्पुरुष की विद्यमानता में इनके प्रत्यक्ष योग में जब वर्तते हैं उसी वक्त जो परिणाम रहते हैं वो घर जाके परोक्ष में नहीं रहते। भले अपने घर पे इनकी छवि लगाई हो और कहते हैं कि हमारे उपकारी है, अनंत उपकारी है, फिर भी प्रत्यक्ष योग में जो परिणाम रहता है ये परोक्ष परिस्थिति में संभव नहीं है। तो यहाँ सौभाग्य भाई ने एक ऐसी बात रखी थी कि मेरे हृदय में आपकी मूर्ति को मैं रखना चाहता हूँ, एक चित्रपट बनवा लूँ, या तो चित्रपट जैसे ही मैं कोई कल्पना कर लूँ और आपको हृदय में रख लूँ। मैंने आपसे मैं बिल्कुल जुदा रहना नहीं चाहता, ऐसा। तो उनके ये परिस्थिति में कहते हैं कि ये कोई दूसरे रास्ते पे चढ़ जाए और प्रत्यक्ष योग की महत्ता को समझने में कोई गलती करे नहीं करे, इसलिए उनको ये कहा कि उस पुरुष के स्वरूप को जानकर उसकी भक्ति के सत्संग का महान फल है। सत्संग प्रत्यक्ष ही होता है, सत्संग तो परोक्ष होता नहीं है। और अपूर्व भक्ति भाव से सत्संग में जाते हैं, इनका जो फल है वो चित्रपट में जो मूर्ति है उसके ध्यान में जो फल आएगा उसमें उसमें बड़ा अंतर है, इसका बड़ा फल है। ऐसा कहकर भी प्रत्यक्ष योग की महत्ता है वो समझाई है, उस पर ध्यान खींचा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अनुभव गोचर बात है कि प्रत्यक्ष परिचय में सत्संग में बैठे हो, प्रत्यक्ष सत्संग में बैठे हो और घर पे उनको ही स्मरण करें, कितना फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। उसमें भान रहता है कि मेरे सामने बैठे हैं, उसमें ये भान रहता है कि ये तुम्हारा है, ये तो छवि है, बहुत बड़ा अंतर है। जो उस पुरुष के स्वरूप को जानता है, मैंने ज्ञानी पुरुष के स्वरूप को जो जानता है, स्वरूप को जानता है मतलब कि इनकी अंतरंग परिणति को पहचानता है, इनके आत्मारूप जो परिणाम है और आत्मारूप जो पुरुषार्थ का परिणमन है, जो शांति का परिणमन है, जो रागादी और पर से भिन्नता का परिणमन है उनको जो अच्छी तरह पहचानता है और स्वरूप में परिणाम कैसा अभेद आत्मत्व करके परिणम रहा है और उसमें कितनी ताकत है, कितनी जमवट है, ये बात जब नजर में आती है तो उस स्वरूप को जानता है। उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट होता है। अगर किसी मुमुक्षु ने ऐसे प्रत्यक्ष सत्पुरुष को पहचाना, उनको नियम से, मैंने इसमें कोई अपवाद नहीं, नियम से उस मुमुक्षु को स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट होगा ही होगा, ये बात बतलाई। अंतर से पहचान करे तो अब ये अंतर से पहचान करेंगे तब ये शुद्ध भाव होगा कि शुद्ध भाव होगा? पद्मचंद जी तर्क निकाला कि जहां तक मुमुक्षु ने स्वानुभव नहीं किया वहां तक तो उसको शुद्ध भाव की शुरुआत नहीं हुई, तो उसको पहले तो इनके जो भी परिणाम है वो शुद्ध भाव रूप ही है। लेकिन आप अकेले शुभाशुभ को ही क्यों देखते हो? हमारा एक प्रश्न आपके प्रश्न के सामने एक प्रश्न में रखता हूँ कि आप मात्र शुभाशुभ को क्यों देखते हो? शुभाशुभ परिणाम तो मुख्यतया चारित्र गुण के परिणाम है, उसी वक्त कोई ज्ञान गुण के परिणाम भी है, श्रद्धा गुण के परिणाम है। इनकी क्या परिस्थिति है? श्रद्धा ज्ञान गुण के परिणमन की कौन सी स्थिति है वो इस वक्त आप क्यों नहीं नजर में लेते कि इस मुमुक्षु की क्या हालत हुई है कि ऐसे सत्पुरुष के अंतरंग परिणति को तक पहुंचने वाले ज्ञान को, मुमुक्षु के ज्ञान को, इस भूमिका की कितनी निर्मलता है और वो निर्मलता कब हुई है कि उसको दर्शन मोह का रस कितना हीन हो गया है, दर्शन मोह का परिणाम की शक्ति कितनी टूट गई है। और उसी प्रकार की जो मलिनता है जो आत्मा को मुख्यतया आवृत करती है, मैंने स्वानुभूति को जो आवृत करती है, उस आवरण में कितना ये पतलापन हो गया है, जैसे एक पर्दा होता है बिल्कुल काला पर्दा होता है तो इसके पीछे जो कोई चीज है वो नहीं दिखती है, फिर इससे कोई ब्राउन कलर का आवे, फिर इससे कोई पीला कलर का आवे, फिर उस व्हाइट कलर का आवे, तो पीछे वाली चीज दिखने लगती है कि नहीं लगती? पर्दा तो पर्दा ही है। वैसे इसके ज्ञान में क्या फर्क हुआ, इसके श्रद्धान में क्या फर्क हुआ, वो तो नहीं विचार करें हम, और उतना ही कहते रहे कि ये तो सब शुभ भाव है, इसके पहले सब शुभ भाव है और शुभ भाव तो ये है, चलो अब क्या करना रहा। मैंने सम्यक दर्शन तक पहुंचने के लिए कोई वास्तविक मार्ग है कि नहीं है, कोई वास्तविक उपाय है कि नहीं है, और कोई ठोस उपाय है कि नहीं है, ये तो हमें हमारी भूमिका में विचार करना चाहिए। तो जो ऐसा कोई उपाय हो सकता है तो हमें उसे अंगीकार करना है, ये हमारी भूमिका का अधिकार का विषय है। हम मुनि दशा के योग्य परिणमन नहीं कर सके, ऊपर ऊपर की मोक्ष मार्ग की दशा में हम नहीं जा सके, लेकिन जो हमारी भूमिका में जो अवश्य होना चाहिए वो भी हम समझे नहीं और उस रूप परिणमन करें नहीं, तो आगे जाने का सवाल कहाँ पैदा होता है। यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन के पहले तो चारित्र में तो शुभाशुभ ही होगा। जो पहला फर्क पड़ता है वो श्रद्धा ज्ञान में पड़ता है। तो श्रद्धा तो जब स्वानुभूति होती है तभी सम्यक होती है, इसके पहले सम्यक नहीं होती है। लेकिन आत्मरुचि होने पर, मुमुक्षु की भूमिका में आत्मरुचि होने पर ये दर्शन मोह जो है वो काफी हीन सत्व हो जाता है, उसकी ताकत है वो बिल्कुल कमजोर हो जाने से वो दबता है। जगत में कौन दबता है? कमजोर को दबना पड़ता है, जिसके पास ताकत है वो दबेगा क्या? कोई नहीं दबेगा। इसलिए जहां तक सम्यक दर्शन के पहले दर्शन हो, तीव्र रस से परिणमित होता है, तीव्र शक्ति से, रस मैंने शक्ति की, वहां तक उपशम होने का, दबना मैंने उपशम होने की कोई अवकाश नहीं है। और ये कमजोर पड़ता है तभी दबने का अवकाश होता है। गुरुदेव श्री ने ये बात कही है, दोनों जगह ये आई है, उधर भी आई है, परमागम सार में भी आई है, और इधर जो गुरुदेव के वचनामृत हैं उसमें 203 नंबर का बोल है। 203 नंबर याद नहीं, आनो नंबर याद है। दर्शन मोह मंद हुए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल मा मैंने भाव भाषण मा आते नहीं, निर्णय में आते नहीं, लक्ष्य में आता नहीं। उसका अस्तित्व कैसा है तो समझ में आता नहीं। तो ये दर्शन हो, वैसे तो ये ज्ञान का कार्य है, जानना हो तो ज्ञान का कार्य है, लेकिन ज्ञान मैला रहता है, ज्ञान दर्पण में वो बिंब नहीं आता है, स्वयं का जिन बिंब है प्रतिवास नहीं होता है। इसका यही कारण है कि दर्शन मोह का जो रस है इसके लिए ज्ञान उतना मैला रहता है। तो ये मंद हुए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में आवे नहीं, और दर्शन मोह का अभाव हुए बिना उसका अनुभव हो सकता नहीं। तो इसका ये क्रम हो गया, नियत क्रम हो गया कि अभाव होने के पहले मंद होना आवश्यक है। तब इसी मुद्दे पर ये प्रयोजन सिद्धि में सारी चर्चा चली कि मुमुक्षु की भूमिका में कब मंद होता है, कब तीव्र होता है। एक ही बोल में दोनों बात लिया है कि एक ही मुद्दे में कब तीव्र हो जाता है और एक ही मुद्दे में कब मंद हो जाता है। मंद हुए बिना अभाव होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि पहले उपशम होता है, कभी पहले क्षय होता ही नहीं, मैंने पहले दबता है, कमजोर हुए बिना दबेगा नहीं। ये एक ऐसा जबरदस्त भाव है जीव के स्वभाव के विरुद्ध का। मैंने एक बहुत ताकत वाला दुश्मन कोई है जीव का तो ये दर्शन मोह है, इतनी ताकत दूसरे किसी परिणाम में नहीं है। एक दर्शन मोह के परिणाम में उतनी ताकत है कि अनंत शक्तिमान जीव को वो आवृत करके सारे संसार में घुमाता है। एक का ये फल है, अनंत जन्म मरण इसी का ही कारण है, दूसरों का नहीं। दूसरे तो टिक ही नहीं सकते, वो गया तो राजा मर गया, फिर सैनिक की क्या गुंजाइश। जिस पुरुष ने राजा को मारा फिर इनके जो सिपाही लोग हैं उनको नहीं मारेंगे और तो वैसे ही भगने लगेंगे कि अरे मेरे राजा को मार दिया, अभी हम क्या करेंगे, चलो हम तो भागो यहां से, ये बात हो जाएंगे। तो इसकी ताकत तोड़नी पड़ती है, पहले वो दबेगा फिर क्षय होगा। ये ताकत कहाँ टूटती है, कैसे टूटती है, तो ये श्रीमद् जी का कोई रहस्यपूर्ण विषय इस विषय में अगर आया है तो ये आया है कि जिसको दर्शन मोह का अभाव जिसने किया, ऐसा जो सत्पुरुष, इस सत्पुरुष की जो पहचान हो गए और इस सत्पुरुष की महिमा आवे पहचान से, तो ये व्यक्ति की पहचान नहीं हुई, दर्शन मोह का अभाव करने वाले पुरुषार्थ की पहचान हुई है। दर्शन मोह का अभाव करने वाले आत्मभाव की पहचान हुई है। तो ये अभाव का, दर्शन मोह का अभाव में जो सद्भाव हुआ, जिस परिणामों का सद्भाव हुआ, इस परिणामों को जिन्होंने पहचाना, वो पहचान के काल में दर्शन हो हीन सत्व होने लगता है, बहुत आसानी से और बहुत सुगम प्रकार से। दर्शन मोह मंद होने के बहुत से परिणाम हैं कि जिस परिणाम से दर्शन मोह मंद होता है, उन सभी परिणामों में एक ये इतना सुगम और सरल प्रकार है कि आसानी से जीव दर्शन मोह को मंद कर देता है सत्पुरुष के पहचान करके महिमा करने में। इसलिए सारे ग्रंथ में पत्र पत्र में इस बात का संकेत ज्यादा रखने का यही कारण है कि जीव का दर्शन मोह को दबाने की परिस्थिति यहाँ पर बहुत आसानी से होती है। ये यम नियम संयम आपकी पद लिखा है, इसमें कौन सी चीज बाकी रही है बताओ। सब शास्त्र न के नय धारी ये मत मंडन खंडन बहुत किए। शास्त्रों का ज्ञान भी ले लिया है, यही सच्चा है, दूसरा सब झूठा है, खोटा है, क्या बाकी रह गया। तो ये बात रही सो गुरु गम की, ऐसा कहा। चतुरांगुल है दृग से मिले हैं, अपना नजदीक है, चार आंगुल भी दूर नहीं है अपना स्वरूप, फिर भी ये बात रही सो गुरु गम की। ये प्रत्यक्ष योग के बिना ये बात समझ में आती नहीं, शास्त्र से सिद्धि समझ में आती नहीं। कोई ये कहेंगे कि हमारे पास तो बड़े बड़े आगम हैं, हम इससे काम करेंगे, ये सब भ्रम में पड़े हैं, ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। यह साधन बार अनंत कियो, ऐसा कहा, एक बार ऐसा नहीं किया है, यह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजल न पड़ो। अब क्यों न विचारत है मन से कुछ और रहा उस साधन से, उन साधन से, ये सब साधन से कोई दूसरी बात है, ऐसा क्यों विचार नहीं करता। तो ये बात बार बार वो करते हैं कि उसे उस स्वरूप को जो जानता है, इस पुरुष के स्वरूप को जो जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट होता है। ऐसा सत्पुरुष विद्यमान होवे उनको तो पहचान सके नहीं, पर ऐसा अभिप्राय रखे कि हम हमारी आत्मा का पहचान करेंगे, हमें तो हमारी आत्मा का पहचान करके अनुभव करना है, आखिर में तो स्वरूप का सत्स्वरूप सत्पुरुष को पहचान करके भी आत्मा अनुभव करना है और आत्म स्वरूप की पहचान करके भी आत्मा अनुभव करना है, तो हम तो सीधा रास्ता ले, ये तो पर तत्व है, ये स्व तत्व है, हम स्व तत्व की पहचान पहले करें। तो कहते हैं कि थोड़ी देर खड़ा रहो, तुम ध्यान से कोई बात सुनने योग्य है तो वो है कि अगर तूने प्रगट दिए को तो देखा नहीं, तत्पुरुष तो दिया है, और आगम में जो आत्मस्वरूप दर्शाया है वो तो कागज पर चित्रित किया हुआ दिया है, प्रकट दिया को तो तुम देख नहीं सकता कि ये दिया है कि क्या चीज है, और फिर इस दिए से तुम प्रकाश, तुझे यहाँ से प्रकाश मिले तो अच्छा है, ये कागज का दिए में से प्रकाश मिल जाए तो अच्छा है, जो प्रकाश दे रहा है उनको तो समझ नहीं सकता कि प्रकाश तो यहाँ से आता है, को तो छोड़ देता है, ऐसा उन्मुख हो जाता है, विमुख हो जाता है, और ये कागज पर लगा दिया में से वो लाइट प्रकाश पाने की चेष्टा करता है, मिल जावे तो अच्छा है, यहाँ से ले लूँ, मैं यहाँ से मिल जाए, तो बहुत बड़ी भ्रांति में पड़ा है। जिसकी ताकत प्रगट दियो को देखने की नहीं है, वो कागज के दियो को समझे और अपना काम कर ले, यह असंभव है, कभी बनने वाली चीज नहीं है। हाँ, प्रकाश और अंधेरा जितना ही फर्क है। क्यों कि वो चित्रित दिए से कोई प्रकाश मिलता है, वहां तो अंधेरा ही अंधेरा है, बड़ा अंतर है। मैंने वो तो जड़ चेतन जितना अंतर है, एक चेतन है एक जड़ है, इतना अंतर है, बिल्कुल इतना अंतर है। हाँ, इसलिए तो इतना भजन आता है श्रीमद जी का, कोई फालतू बात नहीं करता। उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट होता है, होता ही है, नहीं हो ऐसा नहीं बने। उसके प्रकट होने का कारण, अब उसके प्रकट होने का क्या कारण है, उसके प्रकट होने का कारण उस पुरुष को जानकर सर्व प्रकार की संसार कामना का परित्याग करके, फिर उसको संसार कामना का परित्याग हो जाता है। ये तो अनंत लाभ का मेरा कारण हो गया। साधी अनंत अनंत समाधि सुख में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सहित मेरी स्थिति हो जाएगी। तो उनको संसार में तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं दिखता है कि जिसमें साधी अनंत अनंत समाधि सुख मिले, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख मिले, ऐसा तो कोई संसार में तो पदार्थ है ही नहीं। इसलिए संसार कामना का परित्याग करके, अर्थात असंसार परित्याग रूप करके, असंसार मैंने इसकी इच्छा इच्छा का परित्याग करके, मोक्ष की भी इच्छा उसको नहीं मान, जब सत्पुरुष मिल गया तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं, ऐसा कहते हैं, ये बात लिया है उन्होंने अपने शब्द में। सत्संग के विषय में इतना उतना अपना लिखा है, पत्रांक 269। हिंदी में 304। ईश्वर इच्छा होगी तो प्रवृत्ति होगी, और जो भी प्रवृत्ति होगी उसे सुखदायक मान लेंगे। 306 पेज है। ईश्वर इच्छा होगी तो प्रवृत्ति होगी और उसे सुखदायक मान लेंगे। परंतु अब जो कहते हैं, मन माने सत्संग के बिना कालक्षेप होना दुष्कर है। मोक्ष की अपेक्षा हमें संत की चरण समीपता बहुत प्रिय है। ये असंसार परित्याग है। संसार कामना का तो परित्याग है, लेकिन असंसार कामना का भी परित्याग है। इतना प्रेम आता है, सत्पुरुष अगर विद्यमान हुए तो इतना प्रेम आता है कि संसार के तो किसी पदार्थ की चाहना तो खैर रहे नहीं, लेकिन असंसार की बात भी नहीं रहती फिर। ये ओवर बाउंड बात है सब। आप तर्क क्यों नहीं लगाते वहां पर कि सत्संग से क्या कोई मोक्ष बढ़िया चीज नहीं क्या, या मोक्ष से कोई सत्संग बढ़िया चीज है क्या है? तो क्या है कि जैसे एक दो महीना का किसी ने उपवास कर लिया, फिर तो शारीरिक शक्ति तो कमजोर हो जाएगी, ठीक है। अब शारीरिक शक्ति इतनी कमजोर हो जाने पर अगर इनको कोई लड्डू खिलावे तो, क्योंकि लड्डू में घी ज्यादा आता है और भी मसाला तेजाना डाला, मेवा डाला हो, जो सब शक्तिदायक चीज हो वो भी डाली हो, तो उनको खिला मैं। दो महीने से भूखा है और बहुत कमजोर हो गया है, दो चार लड्डू खिला दो, मर जाएगा। क्या होगा? सीधा ही राम शरण है, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। और उसको मूंग का पानी देना पड़ता है, या वो पतली राब हमारे यहाँ बनाते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं, राब बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जो उपवास के बाद देते हैं उपवासी को, तो वो भी तोला, दो तोला, तीन तोला उतना, वो भी किलो आधा किलो नहीं देते, पानी भी नहीं इतना, वो भी दो तीन तोला देते हैं, फिर आधे घंटे के बाद एक दो तोला देते हैं, फिर दो घंटे के बाद चार छह आठ तोला देते हैं। मतलब कमजोर परिस्थिति में जो देने लायक हो वही दिया जाता है। वहां मुख की बातें और शुक्ल ध्यान की श्रेणी की बात करेंगे तो ये बात कोई चलने वाली नहीं है, ये ऊंचे स्टेज की बात वहां कोई उसके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो उसको तो सत्संग ही चाहिए और सत्संग से ही उसका जो दोष है वो गलने लग जाएंगे, खास करके दर्शन मोह गलने लग जाएगा। तो ये दर्शन मोह को क्षीण किए बिना, उसकी ताकत तोड़े बिना हम कितनी भी आगे की बात कर दें मैं, कोई काम होने वाला नहीं है। मैंने कोई बात वो अंतर भेद करके पहुंचेगी नहीं तो संसार परिणति पड़ी है जीव को। तो बात कर चली थी, संसार परिणति पड़ी है उसको, तो बहुत तगड़ी है वो तो। इसलिए ये कैसे है कि हमें तो मोक्ष के भी, मोक्ष से भी हमें तो सत्संग प्रिय है, संत चरण की समीपता प्रिय है। संत चरण की समीपता मिल गई तो बात खत्म हो गई। मोक्ष तो आने वाली चीज है, वो बुलाने की भी चीज नहीं है, वो तो स्वयं आने वाली चीज है। परंतु उस हरि की इच्छा के आगे हम दीन हैं। मैंने सत्संग मिल नहीं रहा है, इसके लिए हम लाचार हैं कि आजकल सत्संग नहीं मिल रहा है। जैसे जैसा सत्संग हम चाहते हैं ऐसा सत्संग का कोई योग नहीं बैठ रहा है। ये कोई हरि इच्छा है, मैंने कुदरत की कोई परिस्थिति है, इसके पीछे हमारा कोई चलता नहीं है। लेकिन हमारी भावना जो है वो तो ऐसी ही भावना है, मैंने संसार कामना का परित्याग करके, असंसार परित्याग रूप करके शुद्ध भक्ति से, शुद्ध भक्ति से मैंने निष्काम भक्ति से, निरीक्षक भक्ति से, इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति से वह पुरुष स्वरूप विचारने योग्य है। ये सत्पुरुष का जो स्वरूप है वो विचारने योग्य है, पहचान करने योग्य है। चित्रपट की प्रतिमा के हृदय दर्शन से, चित्रपट की प्रतिमा जो है उसको हृदय में रख ले, हृदय दर्शन करें, इससे भी उपर्युक्त प्रगटता रूप महान फल है। ऊपर जो कहा कि इससे नियम से स्वाभाविक अत्यंत शुद्धात्म स्वरूप प्रकट होता है, ये बहुत बड़ा फल है। उसमें तो तुझे दर्शन में मंद होगा या कुछ भक्ति के और परिणाम हो जाएंगे, लेकिन स्वरूप नहीं प्रकट होगा, परोक्ष से स्वरूप प्रकट नहीं होगा, आत्मस्वरूप की प्रगटता मिलेगी, ऐसा महान फल है। यह वाक्य मैंने, यह वचन निर्विसंवादी जानकर लिखा है, मैंने इस वचन पर विवाद की गुंजाइश नहीं है, विवाद का कोई अवकाश नहीं है, ऐसी ये ठोस बात है, ऐसा कहते हैं। इस बात पर, इस बात को विवाद में मत खींचना कि ये तो निमित्ताधीन तो वृत्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ना दे दिया है, इस विषय को तुम विवाद में मत ले जाओ। इतना अगर अपना भला चाहता हो, अपनी बुराई नहीं करने चाहता हो, तो इस विषय को मेहरबानी करके इसको विवाद में मत ले जाओ। दूसरी दूसरी बातों का विवाद कर लेना, लेकिन इस मुद्दे पर तो विवाद करना ही नहीं, ये निर्विसंवादी बात है, इसमें विवाद संवाद करने का कोई अवकाश नहीं है। मन महिलानो वाला ऊपरे, एना करता आत्मस्वरूप ने प्रगटता, ये तो फल लीधु, फल लीधु के जे प्रत्यक्ष सत्पुरुष ने ओळखे, एनु फल ये छे। તો સૌભાગભાઈ ને સંયોગ નહોતો થતો, પ્રત્યક્ષ સત્સંગ એકબીજાનો નહોતો રહેતો. એમને ભક્તિ બહુ હતી, તો એક વિચાર આવ્યો, એક તમારું ચિત્રપટ અમુક પ્રકારનું ત્યાગ દશા વાળું લીધું હશે. પતા નહીં યહી હૈ હમકો, લેકિન એસા કોઈ બાત હોગી, એસી કોઈ બાત હોગી કે ઇનકે જો ત્યાગી અવસ્થા હૈ શ્રીમદજી કી, ઉનકા કોઈ ચિત્રપટ કલ્પના કરકે રખેં ઓર ઉસકો હૃદય મેં ધારણ કરે. મેને આપ મેરે હૃદય મેં સે દૂર રહી નહીં સકતે, ભલે ક્ષેત્ર સે દૂર હો, મેરે હૃદય મેં સે આપ દૂર નહીં રહી સકતે. તો ઉનકી સરળતા ઇતની થી કે ઉનકો જો જો વિચાર આતે થે ઉનકો લિખ દેતે થે. અપને વિચાર કો કભી ગોપિત રખ કે કુછ પ્રવૃત્તિ નહીં કરતે, ખુલ્લમ ખુલ્લા જો ભી વિકલ્પ આયા, જો ભી વિચાર આયા, ખુલ્લા કરી દેતે. મેરા મુજે એસા વિચાર આ રહા હૈ, ફિર ઇસકા કોઈ ઠપકા મિલે તો ભી પ્રેમ સે સુને, ઠપકા ભી દેતે હૈ કભી કભી, ઓર કોઈ ભી બાત હો તો વો તૈયાર હૈ. ઇનકી માનસિક પરિસ્થિતિ ઇતની ભૂમિકા તૈયાર હૈ કે હમે તો એક શ્વાસોશ્વાસ હી ઇનકી બિના આજ્ઞા ચલે તો ભલે ચલે, ઇસકે સિવા હમારી કોઈ પ્રવૃત્તિ ઇસકી બિના આજ્ઞા નહીં ચલે. એસા સત્પુરુષ કે આજ્ઞા મેં હમે રહેના હૈ, इसकी बिना आज्ञा कुछ हमें करना ही नहीं. और हमारे सब परिणाम हैं, जितने भी परिणाम हैं, वो आसान बात नहीं है. हम खुला करके कहेंगे हमको ये हो रहा है, ऐसा भाव आता है, ऐसा परिणाम आता है, ऐसा परिणाम आता है, तो लिख देते थे, क्योंकि प्रत्यक्ष तो थे नहीं, चिट्ठी में लिख देते थे. रोजाना करीब वो चिट्ठी लिखते थे, शायद कोई ऐसा दिन निकला हो कि चिट्ठी नहीं लिखी. तो उसमें एक बात ऐसी भी उन्होंने लिखी, तो उन्होंने इसका मना कर दिया, ऐसा मत करो तुम, जो सत्पुरुष का तुम्हें योग है उसको पहचानो, तुम अच्छी तरह उसके अंतरंग को पहचानो. इसका फल प्रकट आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप की प्रगटता है. ये पहचान का फल आत्मस्वरूप की प्रगटता है. और ये चित्रपट की प्रतिमा के हृदय दर्शन से ये फल महान है. मैंने चित्रपट की प्रतिमा का हृदय दर्शन से आत्मस्वरूप की प्रगटता होने वाली नहीं है, इससे होने वाली है, ये अभिप्राय है. मन महिलानो वाला ऊपरे बीजा काम करंत, इस पद के विस्तार वाले अर्थ को आत्म परिणाम रूप करके, जो आगे अर्थ कर दिया है, आगे के पत्र में विस्तार से अर्थ कर दिया है, उस विस्तार वाले अर्थ को आत्म परिणाम रूप करके उस प्रेम भक्ति को सत्पुरुष में अत्यंत रूप से करना योग्य है. हाँ, वो तो आगे कहते हैं ना, एक ही ध्यान, एक ही उपयोग, एक ही स्मरण, एक ही लक्ष्य, एक ही लय, ये सब प्रयोग किए ना, ऐसे सत्पुरुष के प्रति जो परिणाम हो जाता है, इसका यही कारण है कि उसको ये बात देखने में आ गई कि अनंत काल में ये अनंत परिभ्रमण मिटाने की एक चीज मुझे मिल गई, सर्वोत्कृष्ट चीज मिल गई. जैसे सुगानी जी ने शब्द प्रयोग है, सर्वस्व देने वाले श्री गुरु लिखा है भक्ति करके, सर्वस्व के देने वाले श्री गुरु ऐसा करके लिया है. तो सर्वस्व के देने वाले जो होते हैं उनके प्रति उतना प्रेम आता है, उतनी महिमा आती ही है, क्योंकि इनका सर्वस्व हो गया है. उस प्रेम भक्ति को सत्पुरुष में अत्यंत रूप से करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थंकरों ने कहा है. क्या कहा? ये सब तीर्थंकरों की आज्ञा है, मैं कहता हूं उतनी बात मत मानो, मत समझो, ये सभी तीर्थंकरों ने ये बात कही है. वर्तमान में कहते हैं, अब जो महाविद्या आदि में जो भी तीर्थंकर हैं वो यही बात कहते हैं, और भविष्य में भी सभी तीर्थंकर यही बात कहेंगे। देखिए कितना वजन है इसका, तीर्थंकरों को बीच में ले आए। आप कहते हैं कि फलाना ज्ञानी तो नहीं कहते, फलाना ज्ञानी तो ऐसा नहीं कहते, लेकिन ये तो कहते हैं कि तीर्थंकर, सभी तीर्थंकर ऐसा कहते हैं। सभी तीर्थंकरों की, एक तीर्थंकर की नहीं, भूतकाल के अनंत, वर्तमान में जो विराजमान है वो, और भावी में जो होने वाले अनंत, सभी तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है, ऐसा कह रहे हैं और ऐसा ही कहेंगे। आती है कि नहीं आती है? तो देशना कहाँ से मिलती है? विद्यमान सजीवन मूर्ति के बिना देशना कभी मिलती नहीं है। तीन काल में ये अफर सिद्धांत है, एक ही बात होती है, दूसरी बात होती नहीं। उस पुरुष से प्राप्त हुई उसकी, उस पुरुष से प्राप्त हुई, इसलिए तो कुछ गुरुदेव ने कुछ बैंसरे के विषय में जो कहा, वो जैसे श्रीमद जी की ये बात नहीं बैठती है कितने मुमुक्षुओं को, ये तो बहुत भक्ति की, सत्पुरुष की भक्ति की बात बहुत बार बार करते हैं, गुरुदेव ऐसे नहीं करते, लेकिन गुरुदेव अपने लिए नहीं कहते। जब कोई दूसरा ज्ञानी का सत्संग होने की बात हो तो वो भी उतने ही जोर से कहेंगे जितने जोर से उन्होंने कही। ये प्रतीत होती है कि नहीं होती है? उस पुरुष से प्राप्त हुई उसकी आत्म पद्धति सूचक भाषा। देखो भाषा की पद्धति बताइए, परिभाषा जो करते हैं ना उसमें आत्मकार्य की पद्धति सूचक भाषा, गुजराती में एमएच शब्द से ना आत्म पद्धति सूचक भाषा। अनुवाद तो अच्छा किया है, इसने किया है अनुवाद, अच्छा किया है। उस पुरुष से प्राप्त हुई उसकी आत्म पद्धति सूचक भाषा में जिसका विचार ज्ञान अक्षेपक हुआ है। अब क्या कहते हैं, देखो कि प्रत्यक्ष योग है और प्रत्यक्ष योग में मुमुक्षु का विचार ज्ञान जो है वो विक्षेप वाला नहीं है, जिसमें विक्षेप नहीं है। विक्षेप मैंने क्या, डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं, कि एक बात सुनते सुनते फिर ध्यान दूसरी जगह चला जाए, विक्षेप पड़ जावे। मैंने जो प्रत्यक्ष सुनने में उसका कोई टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, कभी विचार बदल जाता है, कभी किधर लक्ष्य चला जाता है, कभी कोई बात स्मरण में आ जाती है और जो बात एक ध्यान से सुनना चाहिए वो नहीं सुने, वो उसको विक्षेप कहते हैं। ऐसी परिस्थिति जिसको नहीं हो उसको क्षेपकवंत ज्ञान कहते हैं। उस पुरुष से प्राप्त हुई उसकी आत्म पद्धति सूचक भाषा, ये भाषा आत्म पद्धति सूचक भाषा अज्ञानी को नहीं होती। देखिए इस विशेषण जो है वो खास तौर से लिया है ज्ञानी की भाषा को, कि ज्ञानी की भाषा आत्म पद्धति को उसके सूचन करने वाली होती है, कैसे आत्म कार्य करें इस पद्धति को सूच, इस पद्धति की कार्य पद्धति की सूचना जिसमें मिलती है, मैंने विधि की सूचना जिसमें मिलती है, ये ज्ञानी की वाणी में मिलती है, अज्ञानी की वाणी में नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वक्ता हो, पहचाना हुआ या अनजाना हो, कोई भी वक्ता हो, सुनने का प्रसंग पड़ता हो, तो उसके व्याख्यान में, वांचन में, प्रवचन में ये बात गौर कर से करके देखना चाहिए कि उसमें विधि की बात कहाँ, किस तरह, कौन सी आती है, कब आती है, किस तरह आती है, कौन सी आती है, आती है कि नहीं आती है, ये बात को देख लेना चाहिए, पता चल जाएगा कि ये विधि से अनजान है या विधि का जानकार है, इसका पता चल जाएगा यहाँ से। और जो इस विषय पर गौर नहीं करते और वैसे ही सुनते रहते हैं, उनको न ज्ञानी का पता चलता है न अज्ञानी का कभी पता चलता है। और जिसका लक्ष्य है, ध्यान है कि हमें ये चीज देखनी है, तो जिसकी वाणी में ये चीज आती है वो ऐसी दिखेगी कि जैसे अंधारे अंधेरे में प्रकाश दिखता है। घोर अंधेरा हो और इसमें कोई प्रकाश की लकीर आवे, भले ही टॉर्च की होवे, तो किसी को पूछना पड़ता है कि प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, प्रकाश हमने देखा कि नहीं देखा, किसी से सर्टिफाई करना पड़ता है क्या कि हमने प्रकाश देखा कि नहीं देखा। क्योंकि अंधेरा था, कुछ दिखता ही नहीं था, इसमें प्रकाश आया तो कैसे नहीं दिखे। वैसे अगर जिसका ध्यान इस विधि की खोज में है, सुनते वक्त अगर सुनाने वालों के पास ये विधि की आत्म पद्धति सूचक भाषा है, तो उसको अंधेरे में प्रकाश की तरह ये मिल जाती है चीज। अगर इसका ध्यान नहीं है तो ये किसको भी सुनता रहे, चाहे ज्ञानी को सुने चाहे अज्ञानी को सुने, उनके तो कुछ पल्ले बात पड़ने वाली है ही नहीं, न उसको कुछ पहचान होने वाली है कि इसका सुनने योग्य है या इसका नहीं सुनने योग्य है, इसका विवेक भी इससे होने वाला नहीं है। वो तो जहां भी सुनने वाला मिलेगा सुनने को बैठ जाएगा, हमको तो समय सार सुनना है और वो समय सार सुनाता है, ऐसा नहीं सुना जाता। भले विधि थी अज्ञान छे, पण विधि ने शोधे छे आ सवाल छे। अज्ञान छे एनो वांधो नथी, पण शोध तो न होय तो एनो वांधो छे। आप मेळवी लेवा જેવી વાત છે। અજ્ઞાન છે એનો એટલો વાંધો નથી, પણ શોધ છે માર્ગને, માર્ગને શોધ ન હોય તો અજ્ઞાન છે, અજ્ઞાન છે એમ કરીને અજ્ઞાનને કઈ વીંટળાઈને બેસી જવાનું છે? અજ્ઞાનને છોડવું નથી એવી રીતે વીંટળાઈને તો એ પરિસ્થિતિ થઈ ગઈ। એટલે એ વાતને શોધ એના જ્ઞાનને ખોલી દે છે। જિજ્ઞાસા છે એ જ જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ભૂમિકા છે। જિજ્ઞાસાના કાળમાં, સત્યની જિજ્ઞાસાના કાળમાં સત્યનો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો અવકાશ ઉભો થાય છે, ખાલી જગ્યા ઉભી થાય છે। એક તો જીવ કે જ્ઞાન મે ખાલી જગા નહીં હૈ, બહુત કચરા ભરા હૈ, લેકિન સત્ય કી અગર જિજ્ઞાસા હુઈ तो इस जिज्ञासा के काल में सत्य ग्रहण करने का अवकाश पैदा होता है। और इसलिए जिसको जिज्ञासा है उसको ज्ञान प्राप्ति होती है। और इस बात को अच्छी तरह, इस परिस्थिति को पैदा करने के लिए कभी जो अच्छे वक्ता होते हैं वो सस्पेंस स्टोरी की तरह इस बात को रखते हैं, प्रस्तुत करने में ये सस्पेंस की साइड पकड़ते हैं कि अगले को जिज्ञासा और जागृत हो जाए, जिज्ञासा और जागृत हो जाए, और जिज्ञासा तेज हो जाए, इस भूमिका में वो ला देते हैं और फिर बात को रखते हैं इसके साथ। ये चीज है, ऐसा करते हैं। शास्त्र में भी प्रश्न उत्तर रखने का यही अभिप्राय है। जैसे टोडरमल जी ने शास्त्र लिखा तो प्रश्न उत्तर बहुत लिखे, ऐसे भी सभी परमागम में वैसे मात्रा में तो आते ही हैं कि प्रश्न कभी कहीं कहीं रखते हैं ग्रंथकर्ता। इसका यही कारण है कि यहाँ ऐसी जिज्ञासा संभवित है। इस जिज्ञासा, संभवित जिज्ञासा में अगर पढ़ने वाला पाठक तो आया है तो तुझे ये उत्तर देते हैं। अगर तुझे ये जिज्ञासा नहीं है तो हमारा उत्तर बेकार जाएगा। जैसे छठी गाथा समय सार के, तो उसमें आचार्य टीकाकार आचार्य महाराज ने ये प्रश्न उठाया कि कोसो आत्मा इति चेत, ऐसा कौन सा आत्मा है कि जिसको जानना आवश्यक है, जानना जरूरी है, तो जरूरत में रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, उसको कहते हैं गणपमत्तो जान बुद्ध जो भाव। उसको क्या एक भाव बताते हैं, जिसको प्रश्न ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, उसको हम नहीं बताते हैं। ये इसका सीधा अभिप्राय है। सत्य समझवाने, निष्पक्ष हो करके सत्य क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, इतना ही जिज्ञासा, पूर्वग्रह छोड़ करके निष्पक्ष। मैंने ये मत की मत का पक्ष होता है, अपने अपने मत का पक्ष होता है, जिस संप्रदाय में मनुष्य जन्म लेता है उसका पक्ष रहता है, इसका मत का पक्ष नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अपने दोष का पक्ष नहीं होना चाहिए। जहां भी दोष की बात आती हो, मेरे में ये दोष है कि नहीं, मिलान कर ले। जिसको अपना दोष का पक्ष नहीं करना है, वो जिस पर ममत्व है ऐसे दूसरे का भी पक्ष नहीं करेगा। ये जो समाज में हर जगह धार्मिक संप्रदाय में भी गुटबंदी, ग्रुपिज्म क्यों होता है? ग्रुपिज्म कैसे होता है कि दोष है इसका भी पक्ष करता है, यानी ये तो हमारा पक्ष वाला है ना, तो ये भूल करे इसको तो गौण करो, वो सामने वाला क्यों भूल करता है? ऐसा नहीं चले इस मार्ग में, इस मार्ग में ऐसा नहीं चले। भूल कोई भी करता है, दोष कोई भी करता है, वो हरगिज दोषी है। अगर मैं करता हूं तो मेरा भी दोष है, जो भी करता है उसका दोष है, दोष करता है उसको गुण नहीं समझे कभी भी, निष्पक्ष हो जाना चाहिए। तो इस मार्ग में ऐसा ग्रुपिज्म नहीं चले, और ग्रुपिज्म हो तो ये मार्ग नहीं है, उन्मार्ग है, ऐसा। ऐसा जिसको अपना दोष को पकड़ नहीं करना है, दूसरे का दोष का पकड़ करके उसका ग्रुप कैसे बनाएगा? अभी ये हमारा हमको सपोर्ट करने वाला है इसलिए उसको गौण कर दो, ये बात नहीं चले इधर। चाहे कोई साथ में रहे, चाहे कोई साथ में नहीं रहे, हम तो अकेले हमारे मार्ग में जाएंगे, ऐसी जिसकी तैयारी हो, ये मार्ग के अधिकारी है। किसी को सब हमारे सपोर्ट करने वाले को हम साथ में रखें फिर हम आगे चले, ये तो संसार में परिभ्रमण करने की सब चाल है, इस मार्ग में तो नहीं है कहीं। उस पुरुष से प्राप्त हुई उसकी आत्म पद्धति सूचक भाषा, देखिए कैसे कैसे उनकी तो शैली कोई ऐसे है कि आप साहित्य में देखने जाओ तो शब्द नहीं मिले डिक्शनरी में, ऐसे शब्द प्रयोग है। जिसकी वो शास्त्र संज्ञा लिया, शास्त्र संज्ञा आगे बुलाया ने कि हम ऐसा तुमको विचार हो तो, ऐसा तुम्हारी धारणा हो तो, ऐसा तुम्हारा विश्वास हो तो, और हमारा वचन सुनने के बाद कोई लोक संज्ञा या शास्त्र संज्ञा नहीं हो तो, ऐसा करके लिया ने, इसमें शास्त्र संज्ञा का शब्द लिया। मैंने शास्त्रों से मिल खाता है कि नहीं खाता है? आप तो कहते हो लेकिन शास्त्र में ऐसी बात है कि नहीं है? बोलते कि तुम प्रत्यक्ष योग के अधिकारी नहीं, अगर अभी भी तुझे शास्त्र में हमारी बात का मिलान करके सर्टिफाई करना है, मान्य करना है, तो तुम प्रत्यक्ष योग का अधिकारी नहीं है। आत्म पद्धति सूचक भाषा में जिसका विचार ज्ञान अक्षेपक हुआ है, ऐसा पुरुष मैंने, ऐसा मुमुक्षु, वह उस पुरुष को मैंने, सत्पुरुष को आत्म कल्याण का कारण समझकर, क्या समझता है वो, मेरे अनंत कल्याण का कारण है ऐसा समझकर, वह श्रुत मैंने श्रवण करता है, जो वाणी आती है उसको श्रवण करता है, उसको श्रुत कहता है। श्रवण धर्म में मन मैंने आत्मा को, या मन मैंने मन नहीं, मन मैंने आत्मा को, मैंने पूरे आत्मभाव से धारण करके, आत्मा को धारण कर, धारण करता है उस रूप से परिणाम धारण करता है। और परिणाम कैसा करना योग्य है कि मन महिला नूरे वाला उपरे बीजा काम करंत, ऐसा दृष्टांत देकर उसका समर्थन किया है। ये दृष्टांत से इस बात का समर्थन किया है कि जैसे पतिव्रता स्त्री की जो लक्ष्य है, मन है, वो एक ही जगह रहता है, दूसरा सब घर के काम करते हुए भी, वैसा ही इनका एक चित्त जो है मुमुक्षु का, वो सत्पुरुष में रहता है। जैसे इसका धनी में चित्त है, वैसा ही इसका धनी बना दिया कि मेरा तो यहाँ ही चित्त रहता है और कहीं जगह मेरा चित्त नहीं जाता, ऐसा हो जाता है। बहुत प्रैक्टिकल साइड लिया है ये। वो प्रैक्टिकल साइड से एक अनुभव गम्य विषय छे, अने पुते पुरुष छे छता ये वात ने समझा छे कि केवी रीते परिणाम होय छे। वो प्रैक्टिकल साइड छे वात समझा, दृष्टांत ने पाछळ एने जे प्रैक्टिकल साइड छे समझवा जेवी छे। घटित तो इस तरह होता है कि पुरुष के प्रति स्त्री का काम्य प्रेम संसार के दूसरे भावों की अपेक्षा शिरोमणि है। क्या है कि पुरुष के प्रति स्त्री का जो काम्य प्रेम होता है वो संसार के दूसरे सब परिणाम, स्त्री के दूसरे भी परिणाम है संसार के, पुत्र के भी होते हैं, भाई के, बहन के, पिता के, लेकिन ये जो प्रेम है वो शिरोमणि है। तथापि उस प्रेम से अनंत गुण विशिष्ट प्रेम, कितना बराबर नहीं लिया, ऐसे प्रेम से भी अनंत गुण विशिष्ट प्रेम सत्पुरुष से प्राप्त हुए आत्मरूप श्रुत धर्म में करना योग्य है। जो उपदेश उनको सिन्नों को मिला उस पर उतना इतना प्रेम आता है, उतना प्रेम आता है कि मेरा तो उद्धार हो गया, ये चीज मिलने से तो मेरा तो अनंत काल का निविड़ा हो गया। इतना प्रेम आता है कि स्त्री के प्रेम से अनंत गुण विशिष्ट आता है। ये बहुत प्रैक्टिकल साइड है इस लाइन की। ऐसे तो सुनने में ध्यान नहीं देते लोग, तो कहते कि प्रेम का तो सवाल ही नहीं रहा, ये तो अभक्ति हो गई। इतना अनंत गुण विशिष्ट प्रेम होना चाहिए, परंतु उस प्रेम का स्वरूप जहां अदृष्टांतता, मैंने दृष्टांत अभाव को प्राप्त होता है, दृष्टांत भाव को नहीं पर दृष्टांत अभाव को प्राप्त होता है, मैंने भी पहुंच नहीं है, वहां बोध का अवकाश नहीं है, ऐसा समझकर श्रुत धर्म के लिए भर्तार के प्रति स्त्री के काम्य प्रेम का परिसीमाभूत दृष्टांत दिया है। ये तो एक सीमित दृष्टांत दिया है, प्रेम तो अनंत गुण मुमुक्षु को तो श्रुत धर्म में अनंत गुण विशिष्ट प्रेम आता है। सिद्धांत वहां परिसीमा को प्राप्त नहीं होता है, दृष्टांत की सीमा है, सिद्धांत की सीमा नहीं है। जो बेंसरी कहती है कि ये विभाव की सीमा होती है, स्वभाव की सीमा नहीं होती है कभी। इसके आगे सिद्धांत वाणी के पीछे के परिणाम को पाता है, अर्थात वाणी से अतीत परे हो जाता है और आत्मव्यक्ति से ज्ञात होता है ऐसा है, और ऐसा स्वयं को मालूम होता है कि ऐसा ही है। सिद्धांत की मर्यादा नहीं है, ये परिणाम की जरूर मर्यादा है संसार में, लेकिन सिद्धांत की मर्यादा नहीं है, अमर्यादित प्रेम होता है। तभी इसी भूमिका में ही ये श्रवण प्राप्त जो बोध है उसका परिणमन हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है पर हम अपेक्षा रखें कि हम तो इतने साल तक सुना लेकिन हमको क्यों नहीं मिला, लेकिन सुना तो किस भाव से सुना, किस ढंग से सुना, कैसी स्थिति में रह करके सुना, इसका तो कभी विचार किया ही नहीं हो, पर अपेक्षा रखें कि हमने तो बहुत काल तक सुना इसलिए हमको मिल जाना चाहिए, तो ये कोई काल की ऐसी कोई गिनती नहीं है कि इतना काल करे तो ये काम हो जाए, इतनी बात नहीं। वो तो अनंत काल करे, जिस ढंग से करता है उस ढंग से तो अनंत काल करे तो भी नहीं मिलने वाला है, 150 वर्ष की तो क्या सवाल है। ऐसे करके सही परिस्थिति को प्रसिद्ध की है इस पत्र में।